ओम शांति, ओम शांति एवरीवन। आप लोगों की पट्टी कैसी चल रही है? बहुत अच्छा। दीदी अभी क्लास करा के गए, ज्ञान योग से आप लोग भरपूर हो रहे हैं। तो ये जो सेशन है, इसमें हम प्रैक्टिकल, जो हमारी देवी स्वरूप बहनें आज हमारे साथ में है, तो उनके हम अनुभव सुनेंगे, रू रिहान करेंगे। जब आप लोग मधुबन में आते हैं तो एक चीज हमेशा होती है, या तो सीनियर्स होते हैं, मधुबन निवासी होते हैं, हमारी बड़ी बहनें होती हैं, टीचर्स बहनें होती हैं, उनके अनुभव सुनने को मिलते हैं। और बोलते हैं कि अनुभव से जास्ती कोई बड़ा ज्ञान नहीं होता है। जिन्होंने अपने जीवन में जो चीजें अनुभूति की हुई होती हैं, उनसे हम बहुत बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आज हमारे स्टेज पे जो सारी देवियां हैं, दीदी हैं, उनका जस्ट थोड़ा सा मैं परिचय कराना चाहूंगा। आप बीच में देख रहे हैं रमा दीदी को। रमा दीदी एक बार प्लीज। आप दिल्ली से हैं और बचपन से आप बाबा के बच्चे हैं। आप दीदी को देख सकते हैं, बहुत ही शांत योगी। दीदी को कई बार देखा है जब बाहर वालों को हम कोर्स कराते हैं या प्रोफेशनल कोर्सेस होते हैं, दीदी को सुनते हुए देखा है। तो आज उनके उनके सुनते हुए तो देखा है, लेकिन आज उनके अनुभव को भी हम, उनकी जो पुरुषार्थ है उस चीज को हम सुनेंगे। तो दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड समझू दीदी, जो लोग समझू दीदी को जानते हैं वो हाथ उठाओ। अरे बाप रे बाप, दीदी सारे लोग आपको जानते हैं। दीदी ने मेरे को बताया कि अगर आप समझू दीदी बोलोगे ना तो सब पहचानेंगे, अगर निमिषा दीदी बोला तो कोई नहीं पहचानेंगे। तो इसलिए मैंने समझू दीदी, समझू दीदी को आप सब जानते हैं, बाबा के पुराने बच्चे हैं, समर्पित हैं। और साथ में निहारिका दीदी, निहारिका दीदी आप दिल्ली से हैं। आज कल मैं दीदी के साथ ऐसे बैठा था थोड़ा सा, क्योंकि ये सेशन से पहले तो पता चला दीदी एरोनॉटिकल इंजीनियर है। ठीक है, जो विमान होते हैं ना उसमें मेंटेनेंस कैसे करते हैं, वो इतने बड़े आप इंजीनियर हैं। और बाहर भी आपने कॉरपोरेट में सेवा की है, आज आप इनके अनुभव भी सुनेंगे। ठीक है, तो दीदी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर जिनिशा दीदी, आप भी मोरवी से आए हैं, बाबा के बच्चे हैं। और आज आप देखेंगे ना, हमारे सामने डिफरेंट जनरेशन है। जैसे रमा दीदी हैं, बचपन से ज्ञान में है, समझू दीदी हैं, पुराने बाबा के बच्चे हैं, डॉक्टर जिनिशा दीदी हैं, ये 3 साल से समर्पित हैं सेंटर पे, टीचर है। और निहारिका दीदी हैं, आप लगभग 12 साल से सेंटर पे हैं। तो अलग अलग जनरेशन है, हर एक के आप डिफरेंट डिफरेंट अनुभव सुनेंगे। तो शुरू करें फिर अनुभव का। तो दीदी अगेन आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत तो मैं रमा दीदी से करना चाहूँगा। दीदी, जैसे बाबा जब टीचर्स की बात करते हैं, आप सब भी जानते हैं टीचर्स भगवान को, इस धरती को परिवर्तन करना है, स्वर्ग बनाना है, ब्रह्मा के तन में आया और निमित्त किसको बनाया? बहनों को, माताओं को, टीचर्स को। तो इनडायरेक्टली भगवान का जो पहला काम करने का जो है वो हमारी बहनें करती हैं। इसीलिए बाबा बहनों के सम्मान में बोलता है कि आप मेरे गुरु भाई हो। अपनी गद्दी दी है भगवान ने, अगर कोई बैठ सकता है तो वो टीचर बहनें होती हैं। और टीचर बहनें जब गद्दी पे बैठती हैं सेंटर पे, आप सब जानते हो, बहुत सारे उनका केवल टीचर नहीं है, वो आपको माँ बन के पालना देते हैं, दोस्त बन के आपको शिक्षा देते हैं, संभालते हैं। और कई बार ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो आप घर पे भी नहीं बोल सकते लेकिन दीदी को बोल सकते हो। तो इस तरह का बहुत बड़ा जिम्मेवारी लौकिक जिम्मेवारी से भी बड़ी जिम्मेवारी हमारी बहनें उठाती हैं। तो दीदी क्वेश्चन यही आता है कि आप लोग केवल बाबा समान शिक्षा नहीं देते हो, शिक्षा के निमित्त नहीं हो लेकिन पालना के भी निमित्त हो, केवल मुख से ज्ञान नहीं देते हो लेकिन आपके कर्म से भी आप ये ज्ञान देते हो, तो आप अपने स्वपुरुषार्थ में ऐसी कौन कौन सी बातें ध्यान में रखते हैं जिनसे सबको एक प्रेरणा भी मिलती है, आपको भी प्रेरणा मिलती है, वो सारी चीजें, खास करके एज ए टीचर आप जो रोल अदा करते हैं, तो वो मुख्य कौन सी ऐसी धारणाएं होती हैं? ये केवल आपके लिए तो है दीदी, लेकिन हम भी अगर सेवा में उस तरह के, चाहे घर में रहते हैं कहीं पे भी रहते हैं, तो वो कौन सी धारणाएं हम भी ऐसा करें।
ओम शांति। भाई जी ने ये प्रश्न किया है कि जो भी बाबा के समर्पित बहनें अथवा भाई हैं तो वो अपने पार्ट में किस तरह से, जो पालना का पार्ट है या शिक्षा का पार्ट है या कोई भी सेवा है, वो कैसे करते। तो सबसे पहले जब हम इस सेवा में अपना जीवन देते हैं तो वो अपने आप में एक समर्पण भाव शुरू में होता है, लेकिन वो पार्ट बजाते बजाते हम उसमें और पक्के हो जाते, बाबा की मुरलियां सुनते हैं, दीदी दादियों को देखते हैं। तो सबसे पहला जो इस पार्ट में मुझे जो अनुभव से लगता है वो है समर्पण भाव, संपूर्ण समर्पण। हमने अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प सब कुछ बाबा को दिया है। तो जब हम अमृत वेले बाबा से मिलन मनाते, पूरे दिन को आगे देखते हैं, तो यही हम बाबा के आगे रखते हैं कि आज के दिन जो भी पाठ है, सेवा है, उसके लिए हम आपके साथ कंबाइन है। तो बाबा को अवेलेबल रखना, अपने को बाबा के आगे हर समय उपस्थित रखना। बाबा हमें इंस्ट्रूमेंट जैसे कैसे यूज करेंगे जब हम अपने को ऑफर करेंगे, तो उसमें ये ध्यान रखना होता है कि अपने ऊपर कम खर्च करें। खर्च करना मतलब सिर्फ धन नहीं, समय भी। अगर अपने ऊपर ही अपने को संभालने में, अपने को चलाने में, अपना ही कारोबार में हम पूरा वो रखते हैं तो फिर बाबा के लिए हम अवेलेबल नहीं होते। दूसरा निमित्त भाव है कि जो भी जिस सेवा के लिए जो विशेषता चाहिए वो तो बाबा की देन है, हमारी नहीं है। हम सब में, हम सभी बहनों ने ये जरूर अनुभव किया है कि कुछ विशेषताएं हमारे में पहले थी, वो भी बाबा ने बढ़ा दी जब हम बाबा को ऑफर करते हैं। दूसरा, बहुत सारी ऐसी विशेषताएं जो बाबा हम में भरते हैं, क्योंकि ये रिश्ता हमारा और लोगों का नहीं है। बाबा जिस आत्मा की सेवा के लिए या जिस भी सेवा के लिए हमें निमित्त बनाते, वो शक्ति और गुण बाबा भर देते, तो वो उसका क्रेडिट हमें नहीं लेना है, वो निमित्त भाव चाहिए। और तीसरा है जो दातापन की भावना, क्योंकि शिव बाबा तो किसी को कम किसी को ज्यादा ऐसे नहीं करते हैं ना। जो सेवा जब सामने आई आप उसके लिए अवेलेबल होने चाहिए, आपको उसके आगे पूरा अपना देना है, क्योंकि वो आपकी सेवा नहीं है, बाबा की। तो ये कुछ धारणाएं हैं जिसमें सूक्ष्म में ये ध्यान रहता है कि कुछ भी हमारा नहीं, समय भी नहीं, समय भी हम अपने ऊपर नहीं खर्च करें। तो जितना ये मैंपन मेरापन मिटता जाता है उतना ये सरल सहज या देने, बाबा की जो बाबा तो बेहद में है तो हमारी भी सेवा फिर बेहद में होने लगती।
दीदी कई बार ये भी होता है कि लोग ऐसे बोलते हैं कि आप लोग मधुबन में रहते हो या बहने सेंटर पे रहती हैं तो उनके लिए पुरुषार्थ करना बहुत इजी होता है, पर जो लोग प्रोफेशनल होते हैं घर में रहते हैं तो उन लोगों के लिए क्या, मतलब वो भी अपनी स्थिति जैसे होता ना हर समय बाबा से कनेक्ट, तो इस क्वेश्चंस का हम उनको,
उसके लिए मुरली की वो पॉइंट याद करनी है। बाबा ने कहा है कि चाहे सेंटर है या घर है या ऑफिस है, वो सेवा स्थान है। सेंटर भी सेवा स्थान है, ऑफिस भी सेवा स्थान है, घर भी सेवा स्थान है। उसके लिए एक विधि जो मैं अपने लिए यूज करती हूँ कि हर रोज अमृत वेले के बाद, अमृत वेला जो है वो हमारा मुख्य फाउंडेशन है। कुछ बाबा की जो मुख्य धारणाएं या अभ्यास हैं उनको हम फाउंडेशन बना के चले, जो सत्य ज्ञान है मैं कौन हूँ। तो जब अनादि सत्य स्वरूप को रोज हम अनुभव करते हैं कि मैं रोल नहीं, एक अनादि बाप समान ईश्वरीय संतान एक आत्मा हूँ, फिर आज के दिन हम इस पाठ में जा रहे हैं, तो जहाँ भी बाबा हमको भेजे, चाहे घर है लौकिक, मेरे हिसाब से लौकिक अलौकिक ये अलग दो आइडेंटिटी नहीं रखनी, हमारा एक ही आइडेंटिटी है कि हम आत्मा है ईश्वरीय संतान है, और जितने भी बाबा ने स्वमान दिए उसके अलावा लौकिक हैं अलौकिक हैं ये शब्दों में नहीं जाना है। जो सत्य है उसको पकड़िए और उसको अनुभव करिए, फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। तो समय भी जब हमारा नहीं है, सब कुछ बाबा का है, बाबा जहाँ भी हमें रखे, ट्रेन में प्लेन में किसी भी कोने में रेगिस्तान में या शहर में, आप तो ईश्वरीय संतान हो, आपसे सेवा होगी वहाँ पे। तो ये निश्चय रखना है। मधुबन एक सेटिंग है, ऑफिस एक सेटिंग है, लेकिन अंदर जो रूहानी सेटिंग है वो मेन है। वो अगर ठीक है तो हर जगह सेवा हो सकती है और पुरुषार्थ भी सहज हो सकता है।
बहुत सुंदर दीदी ने बताया कि लौकिक अलौकिक, बहुत सुंदर। सबसे पहले तो इस चीज को हम अपने मन से, हम सब कौन है, बाबा के बच्चे, यू नो, हम सबको एक विशेष रोल पार्ट मिला हुआ है ऐसा। थैंक यू दीदी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो समझो दीदी से। दीदी, बाबा कई बार बोलता है हमारे सर्व संबंध बाप से है और सर्व प्राप्तियां भी बाबा से होती हैं। एक मूली में था, स्पेशली टीचर्स बहनों को ही वो रिफर कर रहे थे बाबा, तो उसमें था कि टीचर का संसार एक बाप है और छोटा सा संसार है लेकिन संपन्न और शक्तिशाली, यू नो। तो ये टीचर्स बहनों के लिए तो बाबा सामने आते हैं बोलते हैं, लेकिन ये एक्चुअली हम सबके लिए है। जब हम बाप के साथ सर्व संबंधों से कनेक्ट होते हैं तो उससे बड़ा कोई संसार नहीं है और उससे जास्ती प्यारा और शक्तिशाली कोई नहीं होता। तो दीदी, बाबा के साथ के ये जो आपके अनुभव हैं और विभिन्न जो अनुभूतियां आप लोग करते हैं, स्पेशली उन अनुभूतियों के, उन अनुभवों को आप हमें थोड़ा सा सुनाइए। हम भले सेंटर पे हैं, घर में हैं, कहीं पे, और हम अपने योग की अनुभूतियों को कैसे डीप ले जाके उनको करें, और आपके अगर कुछ पर्सनल अनुभव भी हैं दीदी बाबा के तो प्लीज आप वो भी बताइए।
ओम शांति। बहुत अच्छा प्रश्न किया भाई जी ने कि भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, कैसा है, अनुभव क्या है। तो हम टीचर्स के लिए तो बराबर सबके लिए बाबा ही संसार है, ऐसा समझे, सबके लिए बाबा संसार है। अच्छा, संसार में दो प्राप्तियों के पीछे सब भागते हैं। दो प्राप्तियां संसार से होती है, एक तो सर्व संबंध और संबंध से प्राप्तियां, सुख शांति सहयोग खुशी जो भी कहो प्यार। तो स्वयं भगवान शिव बाबा इस धरा पर आए हैं और निश्चय के आधार पर ज्ञान सहित बाबा के बन गए हैं। तो बाबा ही हमारा संसार है क्योंकि हम आत्मा हैं और आत्मा का इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर ये बात हम ब्राह्मण पक्का कर ले कि हम आत्मा है, परम धाम की निवासी है, शिव बाबा की संतान है, शिव बाबा हमारे सर्व संबंधी है, बाबा से इतना प्यार और रिस्पेक्ट हो, पहले तो पिता के रूप में बाबा कितना प्यार करता है, ज्ञान की गहराई तो बाद में हमको पता चलती है कि भगवान कौन है। पहले तो थोड़ा कोर्स करके बहनों को देख करके बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है, फिर पता चला आत्मा को शांति चाहिए, तो मेडिटेशन के द्वारा बाबा से सर्व संबंध और सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होती है। जब भी कोई बात आती है बाबा के आगे रखते हैं तो वो पिता के रूप में भी मदद करते हैं, दोस्त के रूप में भी मदद करते हैं, भाई के रूप में भी मदद करते हैं, माँ बनकर के इतना प्यार करते हैं, तो कोई संबंधों को याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें भी देहभान छोड़ना है और देहधारियों को भूलना है। तो सबसे पहले अभी तो मैं यही पक्का करती हूँ कि मैं आत्मा हूँ और इस संसार में भगवान के सिवाय हमारा कोई नहीं है, तो बाबा से नजदीकियाँ बढ़ती हैं और भगवान से हर संबंध की अनुभूति होती है। तो शिव बाबा के साथ का अनुभव तो कई बार हुआ, 4 बार तो मैं स्टेज पर मिली हूँ बाबा से रूबरू, और जब भी दादियों से मिलती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं भगवान से मिलती हूँ, जैसे मैं बाबा से मिलती हूँ, जैसे माँ के रूप में बाबा से मिलते हैं। तो बाबा हर पल हमारे साथ है ये मुझे अनुभव होता है। जो भी मेरा संकल्प होता है, अच्छा वाला संकल्प, सेवा में कहो, पुरुषार्थ में कहो, जो भी कुछ संकल्प आगे बढ़ने के लिए करते हैं, तो बाबा जरूर मदद करता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इतना प्यार, इतना मान और इतनी प्राप्तियां भगवान देते हैं, तो उसके रिटर्न में हमें जरूर अपनी स्थिति बना करके उसका रिटर्न देना है। आत्म अभिमानी बन के, परमात्मा अभिमानी बन के रहना है, दूसरों को भी ये बातें सिखानी है कि जितना प्यार बाबा से करेंगे, सर्व प्राप्तियां और सर्व संबंधों की अनुभूति बाबा से होगी। कई है, पुराने हैं, नए हैं, अभी भी बाबा से वो संबंध की, वो प्यार की अनुभूति नहीं होती है, तो कहाँ न कहाँ हम फंस जाते हैं, माना कोई लौकिक अलौकिक में हम फंस जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम आत्म अभिमानी का पाठ पक्का करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि बाबा ही हमारा संसार है और बुद्धि हमारी बाबा के साथ ही रहनी चाहिए। और इतना प्यार अभी भी बाबा करते हैं, इतनी मदद भी करते हैं, इतना साथ भी देते हैं, प्यार भी करते हैं और सम्मान भी देते हैं। इतना ऊंचा जीवन भगवान ने बनाया है तो हमें 100% मम्मा बाबा की तरह बाबा में पूरा निश्चय रखना होगा, तो ही प्राप्तियों की अनुभूति होगी। बाबा सागर है, सागर के तले में जाना होगा तो अनेक अनुभूतियां होगी। कई बार बाबा हर संबंध से साथ निभाते हैं। जैसे मैं लौकिक से छूटना चाहती थी, मैंने बाबा से पिता के रूप में बात की कि देखो बाबा, ये माता जी हैं, ये दादी जी हैं, ये छोटा भाई छोटी बहन है, और आप बोल रहे हैं टाइम नहीं है, और हमारी बड़ी दीदी लौकिक में भी है और सेंटर में भी, जो बड़ी दीदी थी मोरबी वाली चंद्रिका दीदी जी, वो बोलते थे अभी 2 साल है, 2 साल है, 28 साल पहले, तो मेरे को होता है 2 साल, अभी 1.25 हो गए, अभी 1.5 हो गया, अभी ये, तो मेरे पास तो टाइम मिलेगा नहीं भगवान से बात करने का, संबंध निभाने का, कुछ करने का मैं क्या करेगी। तो मैंने बाबा से एक बार थोड़ा जोर से बोला कि अगर मेरे को 6 मास के अंदर आपने फ्री नहीं किया और मैं जो कुछ डिसीजन लूंगी जिम्मेवार आप होंगे। मैं ये परिवार को नहीं देखती हूँ, मैं अभी परम धाम को देखती हूँ और मेरा परिवार मेरा बाबा है। तो ऐसी लगन थी। फिर बाबा ने 9 मास में फ्री भी कर दिया। और ऐसे तो अनुभव तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं यही कहूंगी बाबा ही हमारा संसार है और सबके लिए ये बात सबको पक्की करनी है बाबा ही हमारा संसार
है। ऐसा अनुभव आपको लगता हो कि ये मेरी कैपेसिटी नहीं थी, ये बाबा ने किया, मतलब हाँ। कई चीजें ऐसी होती हैं कि हमारी कैपेबिलिटी नहीं होती है, बाबा की एक विशेष मदद। ऐसे
ऐसे हजारों अनुभव है, लेकिन एक तो बताऊंगी। एक बारी क्या हुआ, हमारे मोरबी में अगर कोई बीमार होता है, बूढ़ा जवान कोई भी, और माना बहुत दर्द से जी रहा होता है, सब संबंधी भी उनको देख करके थोड़ा ढीले हो जाते हैं कि अभी नहीं ये जी रहा नहीं ये मर रहा, माना बहुत दर्द में जी रहे होते हैं, तो डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर सकते। तो एक बारी क्या हुआ, वो सेंटर पे आए, एक माताजी ज्ञान में चलती थी, तो उनके युगल माना इतने दर्द से जी रहे थे कि जैसे इतने श्वास ले रहे थे कि बड़े बड़े 10 नैपकिन रोज गीले हो जाते थे, इतना श्वास लेते थे तो वो फुकारा हो जाता है। तो इधर ऐसे ऐसे श्वास करके उसका जो ये चेस्ट है थोड़ा ऊंचा हो गया, 1 वीक में शरीर नहीं छोड़ रहा है, सब रो रहे हैं। तो उनके रिलेशन में है भाई भतीजे भांजे सब डॉक्टर है वगैरह वगैरह, तो वो भी कुछ कर नहीं रहे हैं। तो बोला ब्रह्मा कुमारी बहनों को बुलाओ ना एक बार, क्योंकि माताजी ज्ञान में चलती थी। तो डॉक्टर्स वगैरह और उनके बड़े भाई हैं, उन्होंने बोला नहीं नहीं वो ये डॉक्टर हैं, घर के कुछ नहीं कर रहे हैं, बहने क्या करेगी। माना थोड़ा सामान्य समझते थे कि ये तो भगवान के राइट हैंड है या उसको तो पता नहीं है, फिर भी हा ना करते हमको लेने तो आए। चलो हम गए बाबा की याद में, थोड़ा जल बना के बाबा की याद में गए गए और इतने सारे थे तो 10 मिनट मैंने उसको जल पिलाया, 2 चम्मच, 2-3 को बोला एक एक चम्मच आप रख दो थोड़ा थोड़ा, बोल रहे हैं नहीं वो एक टिपा भी उतर नहीं रहा, एक ड्रॉप भी उतर नहीं रहा है गले से, क्योंकि शायद गले का था या आंतर का था पता नहीं, कैंसर था और वगैरह वगैरह सब डैमेज हो गया था। तो मैंने बोला चलो बाबा की याद का बनाया हुआ है, मैंने उनको पिलाया उतर गया, आप भी पिला दो। फिर मैंने 10 मिनट, क्योंकि वो ऐसे ऐसे इतना ऊंचा हो रहा था, तो मैंने 10 मिनट बाबा को याद किया कि बाबा आ जाओ बाबा, ये बच्चा बहुत दर्द में जी रहा है, देखो आपको याद किया है, आपको इसका दर्द कम करना है, बराबर है। तो मैंने बहुत प्यार से बाबा को बुलाया और बाबा सचमुच आए और जैसे हाथ रखा था बाबा ने, जैसे 10 मिनट के अंदर वो एकदम शांत हो गया। लगभग 9 दिन से ऐसा हो रहा था और 10 मिनट में एकदम शांत हो गया। डॉक्टर तो सब देख रहे थे। फिर 10 मिनट मैंने बाबा को कहा सिर पर हाथ रख दो बाबा, बच्चे के सिर पर हाथ रख दो, आ जाओ बाबा। तो 10 मिनट भी शायद नहीं हुआ और आत्मा आंख से निकल गई। 3 दिन से आंख खुली नहीं थी, तो आंख खुली तो सब खुश हो गए, लेकिन आत्मा निकल गई, आंख खुली रही, मैंने आंख बंद कर दिया और डॉक्टर्स को बोला आप एक बार चेक कर लो, शायद आत्मा शरीर से निकल गई है। तो सब बोल रहे थे पता नहीं, वो बोलते हैं तो चेक कर ले, चेक किया नहीं है, आत्मा निकल गई। तो देखो बाबा ने कैसे बहुत दर्द से वो पिल रहे थे, बाबा ने मुक्त कर दिया। हम तो बीच में उनके बच्चे हैं हम तो इंस्ट्रूमेंट। बाबा अपना काम तो किसी के भी द्वारा करा सकता है, बहनों द्वारा, माताओं द्वारा, भाइयों द्वारा, सब सबसे बाबा अपना काम कराता है, क्योंकि हम सब बाबा के राइट हैंड है। ऐसे ही एक किस्सा हुआ, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है ना, बाबा का कार्य है, बुलाते हैं तो हम जाते हैं, उनकी भावना होती है तो वो और धर्म में थोड़ा पक्के थे, तो उन्होंने भी हाँ ना करते मेरे को बुला लिया। उनको कैंसर था वो भाई को, और वन साइड पैरालिसिस हो गया, वन पार्ट बराबर, तो वो सवा मास हो गया था, लेकिन फिर भी मैं चलो गई, बाबा को याद किया, दृष्टि देते हुए मैंने जल पिलाया बाबा का। फिर उन्होंने सब बहुत सारे बैठे थे 15-20, तो बोला बहन जी थोड़ा बोलो बाबा का ज्ञान, माना माता जी ले गए थे ज्ञान में चलने वाले, तो मैंने थोड़ा आत्मा का बोला, अभी थोड़ा बाबा का बोलने वाली हूँ। 10 मिनट भी नहीं हुए और वो भाई का हाथ पैर सीधा हो गया, 10 मिनट भी नहीं हुआ और सीधा हो गया। तो वो तो हम तो इंस्ट्रूमेंट है, कराने वाला वो है, कोई भी बहन है, अरे चलो कोई माता भी हो, लेकिन इतना बाबा को प्यार से बुलाते हैं, जरूर बाबा आकर के करते हैं। तो जो हमारे द्वारा दूसरों का इतना कार्य बाबा कर सकते हैं, मैं तो यही कहती हूँ बाबा हाजिरा हजूर है, मैं हमेशा ये अनुभव करती हूँ। मेरे हर संकल्प बाबा पूरा करता है ना, अभी मैंने सोचा है मेरे को कोई संकल्प नहीं करना है, क्योंकि करती हूँ पूरा हो जाता है। मेरे छोटे छोटे संकल्प भी बाबा पूरे कर देते हैं, तो क्या अभी सब दे देंगे, बाद में मेरे को लेना है भाई।
बहुत सुंदर अनुभव दीदी का, और भी सुनेंगे। देखो बाबा कई बार होता है ना कि ओम शांति, तो ये जो मैजिकल टच होता है ना बाबा, कई बार बहनों के थ्रू बहुत बड़े बड़े मैजिक करवा देता है। और कई बार तो मेरे को ऐसा लगता है कि बाबा सबसे जास्ती प्यार बहनों को ही करता है, खास करके टीचर बहनों को, माताओं को भी करता हूँ, पर दीदी आप लोग तो जैसे जुबान पे सरस्वती बैठा हुआ होता है ना। सच में हम कई बार बाबा को बोलते हैं बाबा ये हो जाओ ये कर दो, पर हमारा नहीं होता है, लेकिन बहनों का हो जाता है। तो अभी मेरा क्वेश्चन निहारिका दीदी से है, दीदी ने बहुत सारी बातें बताई भावना वाली हमारी पुरुषार्थ की, लेकिन आज हमारे बीच में निहारिका बहन है जो हवाई जहाज होते हैं उनके इंजीनियर हैं एरोनॉटिक, आपको पता है लॉजिकल दुनिया, लॉजिक और स्पिरिचुअलिटी ये थोड़ा सा अलग अलग लगता है। तो दीदी मेरा आपका यही क्वेश्चन है कि आपका बैकग्राउंड ऐसा है जहाँ विज्ञान है, तर्क है, लोग खुली आंखों से देखते हैं, जो तो जो ये स्पिरिचुअल माइंडसेट आपका हुआ, इस ज्ञान को आपने कैसे तोला, और ये जो सारी धारणाएं एक समर्पित होने का, बाबा के घर में रहते हो तो ये जो लाइफ जर्नी है उसका जो सार है प्लीज आप हमें बताइए। निश्चय की बात हो गई, सारी धारणाओं की बात हो गई, ये आपका अनुभव क्या है?
ओम शांति। सबसे पहले तो आदरणीय मंच, शैलू भाई और आप सभी भाई बहने, सभी को दिल से वेलकम इस बहुत सुंदर सी जगह ज्ञान सरोवर में। और जो अनुभव की बात आपने पूछी कि जनरेशन की बात है, कि सभी को ऐसे लगता है कि जब ओल्ड एज हो जाता है या जो लोग थोड़े वैसे होते हैं उनको आध्यात्मिकता की तरफ रुझाव होता है, लेकिन इस जनरेशन का होना और उसमें जहाँ पर हम जब पढ़ने लिखने लगते हैं तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लिनेशन कम होता है, ऐसा ज़्यादातर देखा जाता है। तो ये सब कुछ होते हुए भी मेरा कैसे इसकी तरफ इंक्लिनेशन आया, तो मैं समझती हूँ कि ये ऐसा हुआ कि मुझे रिलीजियस रही मैं बचपन से, पूजा पाठ करना, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से मैं आई मैंने यही सब देखा और मुझे पसंद भी था। लेकिन वो सब कुछ करते हुए बुद्धि थोड़ी क्यूरियस है रही हमेशा से, और शायद इसलिए इंजीनियरिंग चूज भी किया। तो हमेशा ऐसे लगता था कई ऐसी बातें देखने में आती थी पूजा करते वक्त, या बहुत सारी ऐसी बातें जो सुनते हैं तो समझ में नहीं आता था। एग्जाम्पल कि राम जी ने अपनी पत्नी को, सीता जी को वनवास दे दिया धोबी के कहने से, ये कर दिया। और अगर आपको एग्जाम देने जाना है तो फिर आप भगवान को पूछो, पूजा करो या कुछ करो तो आपको शक्ति दे, आपके एग्जाम्स में मार्क्स ज्यादा मिल जाएं। करते थे, ऐसा नहीं कि नहीं करते थे, लेकिन अंदर ये थॉट चलता था कि ये भी ब्राइब नहीं है क्या, कि अच्छा उनको खुश कर दो तो वो हमको ये दे देंगे। तो ये क्या बात हुई कि अगर भगवान भी ऐसे करते तो हमारे में उसमें क्या डिफरेंस है। तो कहीं ठीक नहीं लगती थी ये बात अंदर को। तो ये अंदर मेरे थॉट्स चलते थे बचपन में ही। तो क्योंकि मैं पूजा करती थी और भगवान से बातें करती थी, तो मैं बचपन से ना माता को बहुत मानती थी। तो मैं बोलती भी थी मम्मा, लेटली आई गेट टू रियलाइज कि मम्मा का कितना स्ट्रांग रोल रहा लाइफ में। तो मैं कहती थी ऐसे क्यों होता है, ये अच्छा नहीं है, ये समझ नहीं आता है। सो ऐसे करते करते क्योंकि मेरे मन में ये थॉट्स थे, तो मैंने चैनल में, जैसे आप लोगों का भी रहा होगा, चैनल शफल करते हुए मैंने शिवानी बहन को सुना, और शायद मेरे मन के कुछ क्वेश्चन का कुछ लाइन में एक आंसर मुझे मिला। तो मुझे लगा ये कुछ ठीक लगता है, ये देखना चाहिए, सुनना चाहिए। और वहां से मेरी जर्नी धीरे धीरे शुरू हुई। बट इतना नहीं था, पढ़ाई करते थे नॉल तो फिर नहीं टाइम बनता था, बट फिर भी सम हाउ बाबा डॉट्स बहुत कनेक्ट करते हैं। एंड देन मैं सेंटर गई, ज्ञान सुना, लेकिन ज्ञान सुनते हुए कई बातों के लिए आंसर ना तुरंत रेलेवेंट नहीं लगते, कुछ के तो लगते हैं कुछ के नहीं लगते। तो मैंने कहा जो भी जिन्होंने भी मुझे कोर्स करा रहे थे, तो मैंने कहा ये ऐसे कई बातों को लेकर जो जेनेरिक प्रश्न होते हैं, तो उन्होंने मुझे एक बुक दिया कि अगर कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन आए तो आप ये बुक खोलना, बाबा को बोलना और बुक खोलना, वो आपको जवाब देगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैं अंदर ऐसे बोलती थी कि अगर मैं कल गई सेंटर और मुझे जवाब मिलेगा तो परसों जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी। तो ऐसा मेरा अंदर कॉन्वर्जेशन चलता था कि ऐसे होगा तो करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। तो वो होता गया धीरे धीरे, कुछ ना कुछ छोटे छोटे आंसर मिलते गए। तो मुझे ऐसे अपने लाइफ में उन बातों को इम्प्लीमेंट करने लगी, क्योंकि मैं थोड़ा लॉजिकली रही तो करती भी थी, ऐसा नहीं खाली सुनना पसंद है लेकिन करती भी थी। तो जब मैं करती थी तो मैंने काफी चेंजेस देखे मेरे अंदर, और वो चेंजेस ने मुझे ग्रेजुअली काफी चीजों में मेरिट दिलाया, वैलिडेशंस मिलने शुरू हो गए, अप्रिशिएशन मिलने शुरू हो गए। तो मैं सबसे पहला अनुभव सुनाती हूँ कि मैं एक बार बीमार हो गई थी और अगले दिन मेरे एग्जाम्स थे, कॉलेज की बात है, तो ग्रुप डिस्कशन था, उसके भी मार्क्स ऐड होते हैं ऐसा था। तो मेरे को फीवर हो गया रात को, और डॉक्टर मतलब लेट नाइट हुआ था, लाइक 11 o'clock, तो हम जैसे पढ़ाई करते थे तो लेट नाइट तक पढ़ते थे ना। तो मैंने कहा कि अच्छा बाबा हो ना तो आप मुझे सुबह तक ठीक कर दो, नहीं तो मैं नहीं मानूंगी कि आप हो ऐसा। एक बच्चे का दिमाग जैसा होता है वैसे। सो लकीली मैं सुबह ठीक हो गई, और मैं गई सुबह, वो सब कुछ दे रही थी जो भी प्रश्न था और सब कुछ किया, वो काफी अच्छा हुआ और मुझे मार्क्स भी बहुत अच्छे मिल गए। तो मैं बहुत खुश हो गई कि हाँ मैं और करूंगी। सो ये सारा कुछ अपनी लाइफ में मैंने काफी अप्लाई किया। और जैसे कहते हैं ना, ये एक जर्नी है, ये एक बात से दो बात से नहीं। और फिर जब माइंड थोड़ा क्यूरियस और इंक्विजिटिव होता है ना, तो वहां पर एक बार तो ऐसे लगता है ये तो कोइंसिडेंट होगा ना, चलो एक बार हो गया तो क्या, ऐसे नहीं, कुछ और होना चाहिए। सो वंस ट्वाइस थ्राइस मल्टीपल टाइम्स, और वो सब कुछ प्रैक्टिकली यूज करते करते मैंने देखा कि हर बार ही काम करता है, लाइक छोटी से और बड़ी से हर बात में ये करता है। एंड देन एक बार लाइक ऑल दिस टुक अ लॉट टाइम, उसके बाद मुझे जहां पर मैं थी एयरपोर्ट पे लगता है इंटर्नशिप था वहां पर, तो वहां पर जो वहां के कैप्टन थे वो सीईओ भी थे वहां के, तो उन्होंने मुझे ऑफर किया सामने से कि आप कंटिन्यू करेंगे स्टाइपेंड पे ऐसा ऐसा। सो आई वाज सो हैप्पी कि मुझे ये चांस मिला। और आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स, क्योंकि किसी को जो इंटर्नशिप होता है ना, तो एक पीरियड होता है कि आपको इतने टाइम इंटर्नशिप करना है और उसके बाद आप अपने कॉलेज या जैसे भी वापस चले जाएंगे. बट मुझे कंटिन्यू करने के लिए बोला तो वो आउट ऑफ 50, बिकॉज एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में मेरा मैकेनिकल सेक्शन है तो उसमें ज्यादातर भाई लोग होते हैं. बहनों को ऐसे लगता है अच्छा ये क्या करेगी, ये तो कोमल है, ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा इंजीनियरिंग में रैगिंग वगैरह होता है. तो ये सब बातें थी. तो काफी चीजों में ये जो बात हुई कि आउट ऑफ 50 आई वन बीन सेलेक्टेड, तो वो बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पर. तो दिस ऑल क्रेडिट गोज टू बाबा. और वहां से मेरा जो इंक्लिनेशन था कि हाँ ये है ये है, तो फिर बढ़ता गया एंड देन स्लोली स्लोली ये और आगे बढ़ा.
आप क्योंकि कैरियर होता है ना, ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे भी कोई कुमारी होंगी ऐसे, आपके सामने एक कैरियर होता है, लेकिन बाबा समर्पित लाइफ होने का वो ऐसी कौन सी चीज, क्योंकि विदाउट रियलाइजेशन विदाउट प्राप्ति ये चीजें आप इतना बड़ा स्टेप नहीं ले सकते हैं. तो वो ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको यू नो प्रभावित किया और ऐसे समर्पित आपको?
सो उसमें सो अगेन ये भी इसने भी थोड़ा टाइम लिया और उसमें बड़ों का काफी सहयोग भी रहा, उनका गाइडेंस रहा. तो समर्पणता का ऐसा हुआ कि मैं बहुत करियर ओरिएंटेड थी कि मुझे ये करना है ना, बहुत लिस्ट कि मुझे इतने एज में ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, मैं पूरा प्रिपेयर्ड था कि ऐसे ऐसे करना है. बट इवेंचुअली जब ज्ञान सुनते रहे तो मन ने मन से पूछा कि क्या करियर बनाना चाहती है. तो अंदर जैसे एक प्रश्न था जो मन में ये पूछ रहे थे कि क्या करियर बनाना चाहते, किसको करियर बनाना है. तो अगर मैं कुछ भी बन जाऊं, लाइक फ्लीट साइन करने लगूं, मल्टीपल एयरक्राफ्ट साइन करने लगूं या और भी कुछ करने लगूं, तो ये सब कुछ करते हुए इवेंचुअली जब हम ज्ञान को बहुत सुनते हैं, धारण करते हैं, तब की बात है. लेकिन वो सब कुछ करते हुए स्टेट ऑफ माइंड जो है ना वो डिस्टर्ब रहता है. लेकिन अगर आत्मा को अपना करियर बनाना है, तो जब ये रियलाइजेशन हुआ कि मैं तो आत्मा हूं, तो आत्मा को करियर बनाने के लिए क्या चाहिए, तो फिर दूसरा पर्सपेक्टिव आता है कि आत्मा कितनी कितनी पावरफुल है, कितनी फ्लॉलेस है, कितना बेदाग हीरा है. तो वो जब समझ में आए तो प्रायोरिटी बदल गई. सो व्हाइल आई वाज वर्किंग और जो कुछ भी मैं कर रही थी वो सब कुछ करते हुए मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा ये रही कि कुछ भी करते हुए मेरा मेरी सेवाएं हैं या स्व सेवा है, अंदरूनी चेंजेस जो मेरे को मेरे अंदर लाने थे वो कहीं कॉम्प्रोमाइज ना हो. और वो सब कुछ देखते फिर धीरे धीरे बाबा बहुत कुछ समझाते हैं. तो ऐसा लगा कि हम ये 84 जन्मों की कहानी है, इट्स अ लॉन्ग वे जीवन यात्रा है. तो फिर एक अगर जन्म, जैसे बड़े कहते दीदी ने कहा कि ऐसा आप करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बाबा को ज्यादा खुशी होगी, ऑल ऑफ दैट. तो इस चीज ने मुझे, क्योंकि करियर की बात थी ना, तो करियर में ये रियलाइजेशन आ गया कि आत्म करियर की ज्यादा वैल्यू है. अगर मैंने शरीर छोड़ दिया तो इतना पड़ा हुआ सब वेस्ट हो जाएगा, फिर से बैक टू स्क्वायर वन होना पड़ेगा. बट देन अगर आत्मा अगर ग्लो कर गई तो अगर दूसरे शरीर में जाएंगे तो भी वहीं से शुरू करना पड़ेगा. सो दैट्स अ बेटर ऑप्शन. तो इसलिए फायदे का सोचा.
देखा ज्ञान कैसे जीवन को परिवर्तन करता है. हाँ ये हर एक के साथ है. जब बाबा बोलते हैं ना मूल बात को पकड़ लिया ना तो सब चीजें सहज हो जाती हैं. दीदी से बहुत सारी ऐसी चीज है ना, हमारे घर में भी बच्चे होते हैं, बहुत कुछ होते हैं, भले वो कैरियर बनाए लेकिन बाबा जो बोलते हैं ना आत्मा का ज्ञान, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है जीवन भर. मैं दीदी से जब कल बात कर रहा था तो बहुत हंस के बोल रहे थे कहीं अहमदाबाद वाले प्लेन में अगर मैं होती तो अच्छा हुआ मैं नहीं गई.
उन्होंने पूछा मुझसे कि अगर आज आप ये नहीं होते तो क्या होते. मैंने कहा पता नहीं, मैं भी उसी प्लेन में होती और क्रैश हो जाती तो क्या होता.
फिर मैंने बोला देखो दीदी आप आज कितनी आत्माओं को उड़ाते हो. हाँ आपके वाइब्रेशन से बोल से जब आप उनको ज्ञान दान देते हो तो आप केवल जहाज नहीं आत्माओं को उड़ाते हो अभी तो. हाँ तो ये बाबा परिवर्तन लेके आता है.
तो बाबा उड़ाते हैं
निमित्त बनते हैं मतलब ये. और ये केवल दीदी की बात नहीं, ये सब हमारी बातें भी हैं. जब हम बाबा से कनेक्ट होते हैं तो बाबा कैसे हमसे सेवा कराता है. अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन दीदी से है, डॉक्टर दीदी से। आप बाबा के घर में 3 साल से रहते हैं, स्टिल आप मेडिकल ऑफिसर हैं, बाहर सेवा भी करते हैं, सेंटर पे रहते हैं। दीदी ये जो धारणा वाला यू नो सब्जेक्ट आता है, यू नो बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है धारणाओं का ब्राह्मण जीवन में। चाहे हम नए हैं या पुराने, धारणाएं तो हमें जीवन भर पालन करनी है, मर्यादा और धारणाएं। तो दीदी ये जो बैलेंस है आपका यू नो समर्पित जीवन में सेवा करना, बाहर जाके भी धारणाएं, खुद भी और दूसरे को भी इंस्पायर करना, ये वाला आप अपना अनुभव हमें जरूर सुनाए प्लीज।
ओम शांति। सबसे पहले तो ये कि मैं ज्ञान में कैसे आई, ये थोड़ा धारणाओं के साथ कनेक्टेड है, इसलिए मैं ये बात बता रही हूं कि एक दिन मैं अपने क्लिनिक में शाम को बैठी थी, शाम के 7:30 बजे थे, वो तारीख भी मुझे याद है, 13 सितंबर 2018। तो मैं ऐसे यूट्यूब देख रही थी, तो कभी कभी आता है सत्संग का, वैसे कोई किसी का भगवे 1 मिनट के वीडियो में थे, तो ये क्या है ये मुझे पता नहीं था। तो इतना तो पता चला कि ये कुछ ब्रह्मा कुमारी नाम की संस्था है। फिर मैंने सोचा कि ऐसी कोई संस्था हमारे मोरबी में होगी, तो मैंने गूगल सर्च किया, तो गूगल सर्च में मुझे मोरबी का एक सेंटर का एड्रेस भी मिला, एक दीदी का कॉन्टेक्ट नंबर भी मिला। मैंने फोन किया कि आपके यहाँ कोई सत्संग है तो मुझे वहां आना है। दीदी ने बोला आप कहाँ पर रहते हो, तो मैंने अपना एड्रेस बताया और दीदी ने कहा आपके नजदीक में एक सेंटर है, उन वहां की दीदी का कॉन्टेक्ट नंबर मैं देती हूँ, वहां आप जाना। तो मैंने वहां फोन किया, बोला मुझे आपके सत्संग में आना है, कौन से टाइम आऊ, तो दीदी ने बताया कि कल सुबह 9:30 बजे आ जाओ। और मैंने कहा वहां कुछ सत्संग बत्संग होता है, मुझे कुछ सुनना है, तो दीदी ने बताया कि यहाँ 365 दिन सत्संग हर रोज होता ही, आप आ जाओ बस। तो मैं अगले दिन 9:30 बजे का टाइम दिया था, तो मैं 9:15 बजे पहुंच गई। तो एक बहन मुझे कोर्स कराने वाली थी, वो उस दिन नहीं आई, तो मैंने पहले दिन मुरली सुनी, तो मुरली में इतना अच्छा लगा, इतना शांति महसूस हुई। फिर मैंने सोचा कि चलो कल से तो कोर्स मुझे करना ही है, फिर मैंने कोर्स किया। और अगले दिन के शाम के 7:30 बजे तक मुझे ये पता नहीं थी कौन सी संस्था है, लोग क्या कराते, लेकिन उसके अगले दिन के 9:30 बजे मैंने मुरली सुनी, तो ये मार्ग मैंने पसंद कर लिया कि बस मुझे यही करना है। 14 घंटे हुए थे, ये संस्था क्या है, ये लोग क्या करवाते हैं, क्या सुनाते हैं, सिर्फ 14 घंटे के अंदर मैं बाबा की बन गई। तो ये सब मेरे लाइफ का एक बहुत ही सुनहरा एक समय था कि जब मैंने ये रास्ता तय किया कि मुझे भी यही करना है, यही सुनना है। लेकिन क्योंकि मैं थोड़ा साइंस पढ़ी हूं, तो सभी बाबा की बातें ऐसे एक्सेप्ट नहीं होती थी, सिर्फ अच्छा लगता था कि शांति महसूस होती है, अच्छा लगता है, मन को शांति महसूस होती है, तो आती थी। बाकी कुछ धारणाएं नहीं करनी है, बाबा शब्द भी नहीं बोलना है, निश्चय भी नहीं है। तो एक बार मैं सेंटर पर ऐसे बैठी थी, दीदी भी थे और एक माता भी थे, उस माता ने प्रश्न पूछा कि तुम्हें बाबा में कितना निश्चय है। तो मुझे तो बाबा शब्द बोलना भी अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने कहा मुझे नहीं पता मुझे कितना निश्चय है। तो माता ने बोला अरे ऐसे कैसे हो सकता है, आपको तो यही बोलना चाहिए कि मुझे बाबा में 100% से भी ज्यादा निश्चय है। लेकिन मुझे क्वेश्चन हुआ अगर मुझे है ही नहीं तो कैसे बोलूं, इसके लिए भी बाबा मुझे कुछ अनुभूति कराए तभी मैं मानूंगी ना कि निश्चय क्या है। तो उस वक्त कोरोना का टाइम चल रहा था, ये निश्चय की भी एक कहानी है। कोरोना का जब फर्स्ट वेव था तो हमारे मोरबी में अभी केसेस नहीं आए थे, तो उस वक्त मैं जॉब कर रही थी, तो अहमदाबाद में कोरोना के बहुत केसेस थे, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में से मेडिकल टीम तैयार करके अहमदाबाद को सेवा के लिए भेजते थे हमें। तो सबसे पहले तो एक टीम भेजी गई जो मेल डॉक्टर्स की थी, और मुझे ये पता था कि जब फीमेल डॉक्टर्स की बारी आएगी तो सबसे पहला नाम मेरा ही होगा। और ऐसे भी हुआ, गांधीनगर से लेटर आया कि आपके सिटी से ये चार डॉक्टर की टीम बना के अहमदाबाद को भेजना है, और पांच डिस्ट्रिक्ट से वो लोग बुलाते थे टीम बना के, और एक मोरबी था, एक राजकोट था, भावनगर था, जामनगर था और जूनागढ़ था। तो मेरी लौकिक माता मुझे ये बोलती थी कि तू कुछ भी करे, सब तैयारियां भले करे, लेकिन मुझे लगता है कि आपको नहीं जाना पड़ेगा। मैंने बोला आपको क्या पता, एक बार लेटर निकल जाता है ना वो कभी कैंसिल नहीं होता, मुझे जाना ही है, जाना ही पड़ेगा। और वो समय भी ऐसा था कि अगर कोरोना पॉजिटिव हुआ तो इतना डर था कि वो ठीक नहीं होगा, फिर सीधा ऊपर। तो अगले दिन मैंने सब तैयारियां कर ली और शाम को मैं सेंटर पर दीदियों से मिलने गई कि मैं अभी जा रही हूं। तो दीदी ने भी यही बोला, मैंने योग किया है, देखना तुझे नहीं जाना पड़ेगा। मैंने बोला अभी शाम के 6:30 बज गए हैं, कैसे नहीं जाना होगा, अभी तो ऑफिस भी बंद हो गया होगा, नहीं मुझे जाना ही पड़ेगा। वो बोलती तू कुछ भी सोच ले, कुछ भी कर ले, कुछ भी बोल ले, नहीं जाना पड़ेगा। मैं कीधु नहीं, ऐसा तो नहीं है, जाना ही पड़ेगा दीदी, आपको नहीं पता है, क्योंकि ये ऑफिस का टाइम होता है तब तक कुछ हो सकता है, लेकिन 6:30 बज गए हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। तो मैं घर पर आई, सब तैयारियां कर ली, फिर शाम को 9:30 बजे तक ऑफिस से फोन आता है, ऑफिस तो 6:00 बजे बंद हो जाते, फिर भी 9:30 बजे रात को फोन आता है कि फिर एक लेटर इमरजेंसी में आया है कि 5 जिले में से बाकी 4 जिले वाले की टीम को जाना है, सिर्फ मोरबी वालों को नहीं जाना है। तो कितनी कमाल की बात है, मुझे उस वक्त ये महसूस हुआ, मैंने पहली बार बोला बाबा ये काम आपके सिवाय और कोई कर नहीं सकता। और उसी सेकंड से मुझे बाबा में 100% से भी ज्यादा निश्चय बैठ गया कि कुछ तो है, बाबा आप ही ये काम करा सकते हो। फिर ये मार्ग पसंद कर लिया, निश्चय भी बैठ गया। अब आई धारणाओं की बात, तो मुझे ये लगता था ये लोग बोल रहे हैं कि लहसुन प्याज नहीं खाना, बाहर का नहीं खाना, मुझे तो खाने का बहुत शौक है, क्यों नहीं खाना चाहिए, इसमें क्या बुराई है, सबसे पहले तो यही सोचा। फिर एक बार मैं सेंटर पे ब्रह्मा भोजन के लिए रुकी हुई थी, खाना खा लिया, उसके बाद मुझे पानी पीना था, तो दीदी ने बोला कि मैं अपने मटके को आपको हाथ नहीं लगाने दूंगी। मैंने कहा क्यों, तो बोलती है कि आप धारणा नहीं करती, इसलिए बाबा के घर के मटके को भी आप हाथ नहीं लगा सकती। उस वक्त यूं महसूस हुआ कि क्या मैं इतनी शुद्र हूं कि आपके पानी को भी हाथ नहीं लगा सकती, अगर मुझे ये टच करना है तो क्या करना पड़ेगा। फिर उन्होंने सारी धारणाएं मुझे दिखाई कि ये करो तो ये हो सकता है। फिर मैंने कहा इसी घड़ी से, इसी सेकंड से मैं सभी धारणाएं धारण करती हूं। तो ऐसे अचानक से धारणाएं भी शुरू कर दी, लेकिन बाबा पेपर तो लेता है ना, सबसे पहला पेपर तो धारणाओं के बारे में ही आता है। तो जब से मैंने धारणाएं शुरू की, कुछ ही दिनों में ऐसा हुआ कि मोरबी से राजकोट मेरी 5 दिन की ट्रेनिंग फिक्स हो गई, वहां मुझे जाना था। तो अभी खान पान का क्या करे, 5 दिन तो चल नहीं सकता खाने के बिना। तो हमारे सेंटर पर एक भाई आते थे जो पहले राजकोट में रहते थे फिर मोरबी में आए थे, तो मैंने उन्हें सिर्फ ये पूछा कि मेरे ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे है और उसके नजदीक में कोई सेंटर है तो मुझे आप बताना, क्योंकि मुझे वहां पे मुरली सुनने जाना है। तो भाई ने कहा कि मैं शाम तक आपको बताता हूं। तो शाम को उस भाई का फोन आया कि मैंने आपके ट्रेनिंग सेंटर से नजदीक में एक सेंटर है, वहां बातचीत कर ली है, आपको सिर्फ वहां मुरली सुनने के लिए नहीं जाना है। मैंने बाबा को अगले दिन ही बताया था, बाबा ये धारणाएं आपने बताई है और मैंने की है आपके कहने पर, अभी मेरी धारणा कायम रहे या टूटे ये आपको देखना है, ये आपकी जिम्मेवारी है। तो भाई ने मुझे ये बताया कि आपको वहां मुरली सुनने के लिए ही सिर्फ नहीं, मैंने बात कर ली है दीदी से, आपको वहीं पर रहना है वहीं पर खाना है, अब और ट्रेनिंग के लिए जाओ तो टिफिन भी वहां से लेकर जाना है। तो बाबा ने ऐसी मदद की, क्योंकि मैंने बाबा को बोला था धारणाएं आपने दी है, मैंने तो आपने कहा वो करा, अब आपको कुछ मदद करो तो मैं करूंगी वरना नहीं करूं। ऐसे बहुत बार मैंने बाबा को बोला कि ये मेरी धारणा टूटनी नहीं चाहिए, ये आपकी जिम्मेवारी है। फिर बाबा ने हर बार ऐसे ही मदद की, तो उसके बाद मुझे लगा कि बाबा को मैंने बाबा का पेपर लिया पहले कि आप मदद करते हो कि नहीं करते, तो बाबा हर बार पास हो गया। फिर कितनी बार बाबा ने मदद की, अब मेरी बारी है कि बाबा मेरा जो पेपर लेगा उसमें मुझे पास होना ही है। तो फिर भाई जी ने एक और प्रश्न पूछा था,
शॉर्ट में बताओ प्लीज। हाँ
जी, अभी शॉर्ट में ही बता रही हूं कि समर्पित कैसे हुई। तो ऐसे समर्पित होने का कुछ ख्याल नहीं था, सिर्फ ज्ञान में चलना था। तो जब ज्ञान में चलती थी तो मेरे लौकिक माता पिता ये कहते थे, क्योंकि वो वक्त ऐसा था कि शादी कर ले, वो उनकी मत थी कि शादी कर ले, और मेरी मत थी कि मैं शादी तो कभी नहीं करूंगी, वो मेरी मत थी। और मेरे लौकिक परिवार वाले जो है, मेरे रिलेटिव्स, वो कुछ तीसरा रास्ता बता रहे थे कि तू यहां जाना बंद कर दे तो तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी और तू शादी कर लेगी। तीन रास्ते थे, पेरेंट्स के, मेरे और परिवार वालों के। तो मैंने एक दिन बाबा को बोला कि बाबा ये तीन रास्ते हैं, इसमें से मुझे कौन सा रास्ता चुनना है, अब आप बताओ। तो मुरली में कई बार आता है कि बाबा आपके हर प्रश्न का उत्तर मुरली में देता है। उस वक्त भी कोरोना का टाइम चल रहा था, तो मैंने बाबा को बोला बाबा मुझे एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए, अगले तीन दिन की मुरली में आप मुझे उसका आंसर देना। फिर दो दिन तो ऐसे ही बीत गए, मैं ही भूल गई कि मैंने बाबा को क्या क्वेश्चन पूछा था। दूसरे दिन रात को मुझे याद आया कि दो दिन की मुरली तो चली गई, मुझे ही याद नहीं था, लेकिन अब एक अगले दिन की मुरली बाकी है, शायद मुझे उसका आंसर मिल जाए। तो मैंने रात को सोते समय ये फिर चिंतन चला कि मुरली तो पूरे चार पेज की होती है, मैं कैसे समझूं कि मेरे क्वेश्चन का आंसर इसमें से कौन सा है। तो मैंने एक बात तय की कि उस वक्त हम मोबाइल में मुरली पढ़ते थे, मैंने ये नक्की तय किया कि अगले दिन की मुरली मैं जब सुनूंगी पढ़ूंगी उससे पहले मैं पूरी मुरली मोबाइल में ओपन कर लूंगी, फिर आंख बंद करके मुरली ऊपर नीचे स्क्रॉल करूंगी, और जो उस मुरली की पहली लाइन मोबाइल स्क्रीन पर दिखेंगी वो मेरा आंसर होगा। तो सुबह जो मैंने ऐसा किया, आंख बंद करके मुरली स्क्रॉल की और आंख खोली, तो सबसे पहली लाइन यही थी कि बाप ने बताया बनाए हुए इस बेहद के यज्ञ में अपने आप को संपूर्ण समर्पित कर देना है। तो यही पहली लाइन थी। अब मैंने तो ये चौथा रास्ता तो कभी सोचा ही नहीं था कि समर्पित होना है, और बाबा ने बता दिया कि अपने आप को संपूर्ण समर्पित कर देना है, मैंने तो ये तीन रास्ते ही सोचे थे। तब बाबा ने बताया है तो कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसा मैंने सोचा। फिर ऐसा लग नहीं रहा था कि इस मार्ग पे मैं चल सकूंगी, लेकिन मुझे ध्यान में आने के बाद सबसे पहले मैंने मम्मा की जीवन कहानी की बुक सुनी थी, पढ़ी थी, और उसमें एक बात दो लाइन थी वो मुझे आज भी याद है, और वही उस वक्त लाइन मुझे याद आई। वो लाइन मम्मा ने कही थी कि निकलेगी हम शक्तियां कुरुक्षेत्र के मैदान में, होती चलेगी पास निश्चय के इम्तिहान में। तो वो लाइन जब याद आई तो मैंने ये डिसीजन लिया कि बस अब बाबा ने बताए हुए रास्ते पर ही मुझे चलना है।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। टाइम तो देखो हो जाता है, इतने सारे अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं। मैं बस एक लास्ट क्वेश्चन रमा दीदी से पूछूंगा। बाबा जो बोलता था पहले के बच्चे ये होगा ये होगा, दादियों को समय के बारे में, और उस समय पे वो टाइम दिखता भी नहीं था, लेकिन दादियों ने बाबा पे निश्चय करके वो पुरुषार्थ किया, और वो समय अभी दिखता है दीदी हमें। तो अकॉर्डिंग टू टाइम कई बार हम अलवेले हो जाते हैं या वो पुरुषार्थ इंटेंसिटी नहीं है, तो हम ऐसी क्या पुरुषार्थ करें, कौन सी धारणाएं करें जो हम भी दादियों जैसे या बाबा हमारे पुरुषार्थ में तीव्रता है।
तो ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं दिखता है, अब तो बहुत कुछ दिखने लग गया है, तो इस समय अलबेला होना बहुत बड़ा गफलत कहा जाएगा। हाँ, ये तो अलबेलेपन का समय नहीं है, लेकिन बहुत समय से ये जो समय की बात है तो इस पर चिंतन चलता है। एक है हमारा समय और एक है परमात्मा का समय। हाँ, एक टाइमलाइन मनुष्यों का है जो यहाँ पर है, एक टाइमलाइन बाबा का है, क्योंकि बाबा एक ही टास्क के लिए आए हैं, वो है नई दुनिया की स्थापना। तो गॉड का टाइमलाइन बहुत अलग है, वो हम में से बहुत लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि बाबा का जो टाइमलाइन है यज्ञ पूरा उस तरह चल रहा है, और दुनिया में जो बातें हो रही हैं, बाबा ने बहुत समय कहा है कि विनाश की डेट को नहीं देखो, इंतजाम करो, इंतजार नहीं करो। तो एक विधि है कि आप पुरुषार्थ को एक दिन में स्केल करो, मतलब सुबह जब हम अमृत वेला करते हैं तो जो पुरुषार्थ का लक्ष्य है कि बाप समान बनना है, फरिश्ता बनना है, संपूर्ण बनना है, तो वह स्थिति पर हमें बहुत फोकस करना है। सारे दिन में हमें ये कारोबार, ये सेवा या ये भट्टी उस जगह जाना है, वो नहीं, वो तो निश्चित है, लेकिन आपकी स्थिति कौन निश्चित करेगा, वो आपको ही करना है अमृत वेले। तो एक दिन को ही लीजिए आप, और एक दिन को भी समयबद्ध कीजिए, जैसे आप आधा दिन बीत गया तो सुबह से हमारी स्थिति क्या थी, साधारण थी, श्रेष्ठ थी, मध्यम थी, क्या थी, आज का दिन चला जाएगा। और शाम जब होती है, रात होती है, आज बाबा ने पूरा क्या बोला, पोता मेल, तो शाम को जो वो है ना, अंतमति सोगति, अगर दिन के अंत में ही हम देखते हैं कि सारे दिन में जो भी बातें आई या जो भी कर्म हमने किए, चाहे सेवा ही की, वो भी हमें प्रभावित ना करे। हम बहुत कर्म कॉन्शियस रहते हैं, सोल कॉन्शियस कम रहते हैं। तो बाबा ने जो फोकस दिया है हमें फरिश्ता बनने का, वो कर्म कॉन्शियस होने से तो नहीं बनेंगे। तो स्थिति पर जितना अटेंशन, वो आवर बाय आवर, घंटा बाय घंटा चेक करना होता है, क्योंकि आपका अगर पिछला घंटा साधारण गया, आप इस घंटा तो कुछ कर सकते हैं। और सारे दिन में जब अंत होता है उस समय देखिए आपके मन पे क्या प्रभाव है, और वो प्रभाव लेके आप अगले दिन आत्मा फिर से पाठ में आ रही है, फिर से वही वही चिंतन, वही संस्कार, वही प्रभाव, तो पुरुषार्थ नहीं होता है। पुरुषार्थ का मतलब ये नहीं हमने इतना घंटा योग किया, इतनी सेवा की, पुरुषार्थ मतलब परिवर्तन। अगर आज हम सतों में हैं, कल और सतोगुणी, और सतोगुणी, परिवर्तन अगर नहीं हो रहा, सोल बॉडी में आके वही पैटर्न रिपीट कर रही है साधारणता का, तो परिवर्तन कहाँ हो रहा है। तो आपको एक दिन को सफल करना है, जो भी आपका लक्ष्य है, माया जीत, प्रकृति जीत, सफलता मूर्त, जो भी आपका लक्ष्य है, डबल लाइट, वो आज बनना है। आज नहीं बने तो कल भी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि आत्मा वही मिस्टेक्स रिपीट कर रही है या अलबेलापन रिपीट कर रही है। तो अब तो समय बिल्कुल नहीं है, अब तो हिसाब किताब, बाबा का धर्मराज वाला पाठ शुरू हो गया है, अब बिल्कुल नहीं है। अब अगर मिस्टेक करेंगे तो उसका बहुत गुना अभी ही मिलेगा हमें। तो इसीलिए हम सबको अटेंशन देना है, अपना ये जीवन बहुत वरदान है। इस समय बाबा, समय और जो एडवांस पार्टी बहुत मदद कर रही है, लेकिन आपको समय और संकल्प को पुरुषार्थ के लिए एक प्लान बनाना है, यही तरीका है।
बहुत सुंदर दीदी, थैंक यू। दीदी की बात से सहमत है ना आप लोग, हर दिन हमें सफल करना है, हर दिन जो बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है उसको रिवाइंड करना है. हर दिन अपनी स्थिति को डे बाय डे कुछ न कुछ परिवर्तन करना है. ठीक है, थैंक यू. देखो कई बार है ना, हम लोगों का ऐसा कॉन्शियस होता है कि हम अपनी दीदी की वैल्यू भूल जाते हैं. हो सकता है कोई नई बहनें हों, बड़ों को तो देते हैं, लेकिन बहनें जो सेंटर पे होती हैं, समर्पित होती हैं, भगवान ने उन्हें निमित्त बनाया है. दुनिया में एक कहावत होती है कि भगवान हर जगह नहीं होता तो माँ को भेज देता है जीवन में. तो ब्राह्मण जीवन में भी ये अप्लाई होता है. कई बार शिवाबा को अगर कुछ टच करना होता है ना, तो देवियों के सामने देवियों को रख दिया है सेंडर पे. ठीक है, तो इस भाव से हमें अपनी बहनों को ट्रीट करना है. क्योंकि आप सेंटर पे जाएंगे कई बार लगता है, पर ये बहनें बहुत अनुभव के धनी होते हैं और बाबा इनसे अपना कार्य कराता है. तो आज ऐसी बहनों ने हमें अनुभव सुनाए, उनका बहुत 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 धन्यवाद. अभी हम बाबा की याद में बैठेंगे, फिर आपका जो नेक्स्ट जैसे होता है 4:30 बजे.